आपने बहुत ही अच्छा इस यज्ञ की स्थापना किस प्रकार से हुई उसका दादी जी के करमुख कमल द्वारा, क्योंकि शुरू के यज्ञ की कैसे सेवाओं, विभिन्न सेवाओं के द्वारा इस यज्ञ का फाउंडेशन बाबा ने इन दादियों के द्वारा डलवाया और आज देखते जा रहे हैं कि वो ही यज्ञ इतना बेहद का कार्य शुरू की दादियों के अंदर बाबा ने ऐसी शक्तियां भरी जो आज यज्ञ दिन प्रतिदिन दिन दोगुना चार चौगुना ऐसे यज्ञ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे आप हमारे यज्ञ के आदि रतन राजयोगिनी आदरणीय ब्रिज पुष्पा दादी जी हैं। आप इस यज्ञ की शुरुआत से ही हैं। वर्तमान समय आप पंजाब के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं ब्रिज पुष्पा दादी जी। ओम शांति।
यज्ञ जब रचा हुआ था उस समय शुरू शुरू में, और अब जो यज्ञ चल रहा है पहले और अब में, ये दिन भी बड़े प्यारे हैं। बाबा का ब्राह्मण परिवार कितना वृद्धि को पा चुका है, पहले भी देखा। पहले तो सिर्फ हम ही बच्चियां थी बाबा के साथ। हम आपको अपना भी साथ साथ परिचय देते हैं कि बाबा ने जब ये यज्ञ रचा है तो पहले पहले बाबा ने कि छोटे बच्चों का बोर्डिंग खोला था। उस बोर्डिंग में हम थे। जैसे सेंटर्स पर एक जगह सेंटर चलता है, आने जाने वाले आते जाते हैं, वो भी ओम मंडली के नाम से था। और ये जो बाबा ने बोर्डिंग खोला वो ओम निवास के नाम से था। तो जो भी आते थे उन्होंने देखा कि बाबा ने ये बहुत अच्छी शिक्षा, आगे ब्रह्म ज्ञान कहते थे, ब्रह्म ज्ञान बाबा ने बड़ा अच्छा दिया है, तो हम भी अपने बच्चों को भी इस बोर्डिंग में डाले। तो हम थे फैमिलिया का फैमिलिया, कुछ कुछ आती थी, तो हम छह बहन सिक्स सिस्टर्स। बोर्डिंग जब खुला तो हमारा चाचा जो था उसने देखा तो मेरे भाई की इतनी बच्चियां है, तो हम सब सिंधी स्कूल में पढ़ती थी, बहुत छोटे छोटे थे। एक बहन तो हमारी बिल्कुल स्कूल में बैठी भी नहीं थी, और हम जो थी सिंधी पढ़ते थे, पांच छह, कोई चार, कोई तीन। जब दिवाली का दिन आया तो उसने हमको स्कूल से उठा लिया, कहा बाबा ने बहुत अच्छा बोर्डिंग खोला है, और बोर्डिंग 1,00,000 रुपए में बाबा ने इतना अच्छा मकान बनाया था, 3 मंजिल का था और 3 पोर्शन थे। एक में बाबा स्वयं रहता था और हम बच्चियां भी रहती थी, और बीच में बाबा ने पढ़ाई का स्कूल भी रखा था, कमरे बनवाए थे जैसे बच्चे पढ़े भी। तो बाबा ने बोर्ड जब खोला तो हम भी, और बाबा का बेटा छोटा वो भी एक था, एक बेटी भी थी साकार बाबा का, वो भी हमारे साथ बोर्ड में थे। तो यो हमारी दादियां है, ये हमारी ब्रह्मणिया थी, चंद्रमणि दादी, कुमारका दादी और शारदामणि दादी, 5 ब्रह्मणिया हम बच्चों के ऊपर थी। तो बाबा ने हम बच्चों की दिनचर्या ऐसी रखी जो सारा दिन सुबह उठते ही बाबा को याद करना, फिर हमारे टाइम पर, और फिर भोजन भी बाबा ने राजकुमार जैसा खिलाया। आगे जमाने में देसी घी 1 रुपए किलो मिलता था, तो आलू की रोटियां खिलाना, फिर साथ साथ में रोज दूध, 3 बार दूध पिलाना। और उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर हमारा स्कूल खोला। बाकायदे ब्लैक बोर्ड बेंच वगैरह सब थे, लेकिन हम सब सिंधी थे, हमें पता नहीं था हिंदी में कोई भाषा होती है। तो एक माता बुजुर्ग 60 साल की बुढ़ी थी, वो सब भाषा जानती थी, हिंदी भी जानती थी, सिंधी भी जानती थी, गुजराती भी जानती थी। अब हम हिंदी कैसे सीखे, हमें कभी संकल्प नहीं है बाबा हमको हिंदी क्यों पढ़ा रहा है। ये तो अभी पता चले हमारी हिंदी हम कितनी काम में आ रही है, बोलने में, लिखने में, पत्र व्यवहार करने में हिंदी हमको कहेगा तो दुनिया में जानते हुए कहकर क्या होती है। स्कूल में भी कभी पढ़े नहीं, जब सिंधी मैंने सब सिंधी स्कूल में पढ़ी हुई थी। तो वो जो माता थी बुढ़ी, तो बाबा ने तो बाकायदे ब्लैक बोर्ड बेंच वगैरह सारा स्कूल बना लिया, बोर्डिंग में बीच के पोर्शन में नीचे रहते थे, बीच में तीसरा जो ऊपर हाल था वह हम सोते थे। तो 2-3 घंटा हमारी पढ़ाई हिंदी पढ़ने की थी। भविष्य के तो बाबा जानता था इन बच्चों को आगे चलकर हिंदी भाषा काम में आएगी, और हमारी जो सिंधी भाषा थी उसमें भी अल्फाबेटिकली थी, अलब अल्लाह बेबुरी थे त्रिलोकी थे, सारे जितने शब्द बाबा ने हमारे सिंधी में थे वो सब ज्ञान के सिखा दिए थे। क्या कहा गया जैसे है ना हिंदी भाषा, ऐसे सिंधी में भी ते त्रिलोकी थे ठाकुर, जितने हमारे शब्द थे वो सब हमको बाबा ने ज्ञान के शब्द सिखा दिए। तो जब ये बोर्डिंग खुला तो शहर में पता चल गया तो दादाजी तो बहुत बड़ा बोर्डिंग खुला है, तो वहाँ की बच्चियाँ छोटी 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 बच्चियाँ, बाबा ने 4 साल से लेकर 10 साल तक बच्चियाँ रखी थी, कुमार इतने नहीं थे, कुमारियाँ ज्यादा थी। तो बड़े बड़े ऑफिसरों को पता चला भाई ये तो एक बहुत अच्छा बोर्डिंग खोला है, तो बड़े बड़े ऑफिसर आते थे। बाबा ने उनको 2-3 बातें पक्की करा ली, एक तो हम भाषा सीख गए, कैठा गए, ये तो हम लिखत पढ़ में सीखे, अंग्रेजी बाबा ने पढ़ाई। अंग्रेजी में एक मुसलमान था, वो बाबा जो मुरली चलाता था उसकी ट्रांसलेशन करता था और उसका टाइप करके डिस्कोर्स बना लेता था, वो हमको क्लास में फिर जो मुख्य मुख्य शब्द थे वो हमको पढ़ाए जाते थे। और इतना सिंपल लिटरेचर भी इतना सिंपल, आज भाई जगदीश वगैरह रमेश भाई बहुत इंग्लिश बड़ी लिखते हैं, हाई लिखते हैं, लेकिन उस दुनिया में हम इतनी इंग्लिश भी नहीं जानते थे, लेकिन इतनी इंग्लिश हमारे भाई जो 2-4 रहे होते वो जैसे ये मुसलमान था उसने सारा डिस्कोर्स इंग्लिश में किया, उनमें से मुख्य मुख्य शब्द हम लोगों क्लास में पढ़ा लेते थे। इसका नतीजा ये निकलता था तो हम जो लिटरेचर निकलता वो थोड़ा 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 अपना सिंपल लिटरेचर पढ़ लेते थे। तो हिंदी सिंधी तो जानते ही थे, हिंदी बाबा ने अल्फाबेट हिंदी भी सिखा दी, सिंधी तो हम सभी जानते थे। तो बाकायदे 2-3 घंटा हमारी क्लासेस थे, उसमें दादी दीदी सब हिंदी पढ़ती थी, पर क्लास कैद मुझे चलते थे, छोटी बच्चे फिर थोड़ी बीच वाली बच्चियाँ फिर दादी आ क्यों सबको हिंदी सीखनी थी। इसका हमें मालूम नहीं कि बाबा हमको बाहर भेजेगा, हम हिंदी किस लिए सीख रहे हैं। आज हिंदी पत्र लिख देते हैं, हिंदी मैगजीन पढ़ लेते हैं, पत्र का उत्तर दे देते हैं, लेटर आते हैं हिंदी में, आज हमको ये सब भाषाएं काम में आ रही है। क्योंकि बाबा तो जानता था मेरे बच्चे अब तो इतना, 1 साल सिर्फ हम उस बोर्ड में रहे, बस 1 साल के बाद लोगों ने इतना हंगामा किया जो हमारे उस भवन को राख लग गया। अब हम फिर चले गए कराची हैदराबाद छोड़ करके, बोर्ड 1 साल हम सिर्फ रहे। इसके बीच में तो कई पिकेटिंग हुई, हम बच्चियाँ पिकेटिंग में छोटी छोटी बच्चियाँ थी घूमने चली जाती थी, सैर करने कटे कटे जाते थे, ले जाती थी कोई हमारी बहने, फिर लौट आते थे, फिर चले जाते थे हमारी दिनचर्या में, दिन में ये फिर दिन में थोड़ा आराम करना, शाम को फिर योग ज्ञान करना, और रात को फिर बाबा चक्कर लगाते तो मेरी बच्चियाँ क्या क्या करेंगे। अच्छा ये हमारी दिनचर्या इतनी अच्छी चल रही थी, पर उसके बाद हम फौरन आगे करना चाहते। तो ये जो है हंगामा थोड़ा कुछ हुआ, पिकेटिंग हुई, और उसमें क्या था बोर्डिंग की ये विशेषता रही कि बड़े बड़े ऑफिसर आते थे तो उनसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे, एक पहेली हल कराते थे, जो कहते ना आप कौन हो, समझो कोई जज आ गया कोई इंजीनियर आया, वो कहेंगे मैं तो इंजीनियर हूँ, हम कहते थे आप इंजीनियर कैसे, मैं पूछती हूँ आप कौन हो, तो आत्मा का उत्तर तो कोई देता ही नहीं था, भाई मेरा मेरा कहने वाला आप कौन हो। ये जो पहेली जिससे भी पूछते बड़े बड़े ऑफिसर आते थे देखने, उसमें फेल हो जाते हैं। हम कहते हैं आपको उत्तर आता ही नहीं, आप ये पहली हल कर नहीं सकते। तो छोटी छोटी बच्चियां बोलती थी तो उनको बहुत सुंदर महसूस होता था। तो ये उनको शिक्षा इस बोर्डिंग के अंदर कैसी मिलेंगी है, ये तो बड़ी वंडरफुल शिक्षा है। ये पहली जो ये लोग पूछती है छोटी छोटी बच्चियां, हम तो इतने बड़े बुद्धिमान होकर हम उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। बुद्धि हमारी इतनी तेज है, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ, डॉक्टरी पढ़ा हुआ, मैं कौन हूँ इसका उत्तर ही नहीं आता है। जो देव मन का उत्तर देते थे ना, मैं फला हूँ मैं फला हूँ, मैं आत्मा ही उत्तर देते नहीं थे। फिर हम उनको वो पहेली हल करके सुनाते थे। पहली बात तो इस पर तो लोगों को बहुत महसूस हुआ कि यहाँ का ज्ञान, ये जो छोटी छोटी बच्चे ज्ञान सीख रही है, बड़ा गहरा सीख रही है। फिर बाबा हम बच्चों को कई चीजें क्लास में आकर चुंबक दिखाते थे। चुंबक भारी भारी इतना लोहे का था, सुई दूर रखते थे, दिखाते थे, देखो ये चुंबक जो है जंग वाली सुई को नहीं खींचता, जो पियो अपने आप कैसे सुई भाग के इसको लग जाती है, चुंबक को लग जाती है। कभी टू ले आता था, भाई टू जो है सफेद होता है बाहर का, अंदर का कड़वा होता है। इसकी शिक्षा बाबा देते थे, बच्चे अंदर के कड़वे नहीं बनना है, अंदर के मीठे बनना है। वैसे क्या कितना सफेद चिता, कोई अंदर गुण नहीं है तो उसका क्या होगा। इसी प्रकार से कई शिक्षाएं हम लोगों को मिलती थी। तो बोर्ड एक चंद्र में दादियों को अंग्रेजी पढ़ाती थी, वो थोड़ी अंग्रेजी ज्यादा जानती थी, तो वो जो अंग्रेजी डिस्कोर्स के शब्द थे उनको लिखने देती थी, फिर पढ़ने देती थी। हिंदी जो है गोरखपुर की जो गीता, हम किताब नहीं कोई भी पढ़े स्कूल के, इसको किताब हमने देखे नहीं हिंदी के क्या होते हैं, लेकिन वो जो गोरखपुर की जो गीता है उसमें जो कठिन कठिन राष्ट्रपति डब्ल्यू डब्ल्यू शब्द है, ये वो हमको थोड़ा थोड़ा, वो जो माता थी बूढ़ी माता आनंदी उसका नाम था, वो हमको हिंदी बहुत पढ़ाती थी। उसमें सब पढ़ते थे, सवेरे ड्रिल भी करते थे, जैसे बच्चे ड्रिल करते ना, चंद्रमणि दादी हमारे ऊपर थी, ड्रिल भी कराती थी। दूसरी हमारी ड्रेस बाबा ने जो सफेद वस्त्र पहने तो फ्राकों के ऊपर ओम ओम छपा दिया, ओम भट्ट पर लगा दिए, जैसे संस्कृत में ओम लिखते हैं ना, हमारा ओम मंडली नाम कैसे पड़ा। कपड़ों पर भी ओम ओम, जितना भी बसे भी हमारी वहाँ उस पर भी ओम ओम, सभी जानते हैं ओम मंडली जा रही है, ओम मंडली जा रही है। तो ओम का वहाँ हमारे कपड़ों पर सब पर ओम ही ओम था। फिर बाबा बोर्डिंग में हम बच्चियों को कहते थे 15-15 दिन के बाद आपको अपने लोग के घर जाना है। तो एक ही शहर की सब बच्चियाँ थी, हैदराबाद सिंध बहुत बड़ा शहर नहीं था, 2-4-3-4 गलियां फिरो तो घर मिल जाता था। तो जब हम लोग बाबा को कहते थे हम घर नहीं जाएंगे, हम आपको यहाँ भगवान मिल के हम कहाँ जाए, बाबा कहते हैं हफ्ते 15 दिन के बाद आप अपने माता पिता को अपनी शिकल दिखा के आओ, उनका तो मोह है, अब कुछ ज्ञान की बातें सुना के आओ, मैं आएगी लौट के मैं आप लोगों से पूछेंगे तो मैं क्या वहाँ सेवा की। तो हम जब जाते थे, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, तो रास्ते में जाते थे ऐसा लगे चश्मा पहले धरती नीचे 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 धरती दिखाई देती है, कोई चश्मे की ऐसा शीशा होता है। चलते थे ना चल रहे, हमको ऐसा लगता है सारे मनुष्य बंदर ही बंदर है, मनुष्य नहीं है बंदर, वृत्ति दृष्टि में बंदर दिखाई दे। विकारों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, मैं 7-8 वर्ष की बच्ची थी, ज्ञान बिल्कुल विकारों का नहीं था, काम क्रोध लोम हो क्या होता है कुछ पता नहीं। लेकिन जब रस्ते में जाते थे ना, जब गिरते हैं घर जाते थे, वहाँ गीत 2-4 सुना दिए, कहेंगे पानी पियो, पानी नहीं तुम्हारे पे, हमको लगे बंदर है सारे, वृत्ति बंदर होगी हो गई। तो पानी भी नहीं पीते, पानी क्यों नहीं पीते हो, हम कह इनका पानी कौन पिएगा, हम नहीं पिएंगे पानी। ऊंचा मन में बहुत लगता था ये पानी भी नहीं पीते ये क्या बात है, पर ऐसा नहीं प्यार था, ऐसा कोई विरोध नहीं हमारे से ऐसे कर सके। सारा बोर्डिंग में सब निकल गए और 2-3 घंटे के बाद फिर सब बोर्डिंग आ गए। एक बार हमारे लोग शरीर छूट गया, फिर बाबा ऐसे भी भेज देते शरीर छूटा जाओ, तुम्हारी परीक्षा आंखों में आंसू किसको आते है। तो हम 6 बहने थी, 4-5 बहने, तो हम गए, हमको पता चला था हमारे पिताजी का शरीर छूट गया। गए वो जैसे शव रखी रहती है, और घर वालों को देखा कोई रो रहे, हम क्या ओम शांति वहाँ आगे इतना नहीं कहते थे, ओम की धुनी लगाते थे ओम शांति। तो अब आके ओम शांति का ज्यादा क्यों, ओम मंडली नाम पहले भी था। फिर हम थोड़ा टाइम बैठ के जब अस्थि ले गए, फिर वापस आके बोर्डिंग में स्नान पानी किया, फिर बाबा ने बुलाया कहा बच्ची इधर आओ मैं परीक्षा लेता हूँ, किस किस ने आंखों में आंसू पाया। तो हम कहते हमको तो किसी को आंखों में आंसू नहीं आया, ये बाबा पूछ लेते। तो देखिए अब 15 दिन के बाद घर गए, अभी 2 जन आए हैं बोर्डिंग में, अरे इनको माँ बाप से प्यार नहीं है क्या। तो हम कहते बाबा हम तो एक से बीमार रोगी था अगर शरीर छोड़ दे ये बाबा वो कहते क्या तुम्हें जान गया वो बताओ। हम कहते थे वो तो बीमार रोगी था शरीर छोड़ा अच्छा हुआ जाकर छोटा सा बच्चा बना और बच्चे को और खिलाएंगे पिलाएंगे और नचाएंगे खुश करेंगे। अरे तो इसको कौन खुश करेगा रोज बीमारी में दवाई करो ये करो चला गया। तो बाबा कहते चलो ये भी ज्ञान इन बच्चियों छोटी छोटी बच्चियों को इतना उसी में ज्ञान है जो घर में ऐसा ज्ञान देकर आ गई। इस प्रकार से बाबा ने हमारा देव मां तोड़ने के लिए ड्रेस बदली नकल खमीज पहनाई। क्यों? अरे तुम अपने आप को नारी मत समझो तुम शक्तियां हो और अपने आप को पुरुष समझो। तो बाबा ने हमारी बिल्लू निकले और ये खमीज बनवाई ऐसी तो पीला गर्म कपड़ा वहाँ है दरबार में कोई सर्दी नहीं लगती न कराची में गर्म कपड़ों का एक ही था बस दूसरे का नाम ही नहीं था क्योंकि सर्दी थी नहीं। तो बाबा ने जिस मावी देव माँ तोड़ने के लिए लिखकर आपने देखा होगा फोटो बाबा के हाल में वहाँ ऊपर मधुबन में इस हाल में हमारे लिख कर खमीज पड़ी हुई है। तो वो ड्रेस हमको देव माँ तोड़ने के लिए जिसमें हम बहादुर सैन्य शक्तियाँ भी बन गए और पुरुषत्व का शक्तियाँ जब पुरुष नारी नहीं है नारी कमजोर है अबला है ये तुम्हारी बुद्धि से बात निकल जाए। ये भी बाबा ने ड्रेस का जो हमारा दूसरा रूप रखा चलो इस प्रकार से इन बच्चियों का देव माल टूटता जाएगा। ऐसे करते करते आगे चलकर बाबा ने और भी कई सीखा है क्यों एक साल के बाद जब कराची में आ गए तो बिल्कुल अलग अलग मकान क्यों वहाँ भी बहुत धमधम मची। हैदराबाद से कराची में आए कई बच्चियाँ घर छोड़ के आ गई तो अलग अलग मकान में लोग रहे तो लेकिन बाबा जो था मुरली चलाने में एक मकान था बहुत अच्छा बाबा पर गैलरी थी मुरली हमको चलाता तो हम सब नीचे बाबा के हम बाबा की मुरली के बगैर रह नहीं सकते क्यों मुरली रोज सुनते थे तो कैसे हम अलग हो जाएंगे। तो क्योंकि मुरली का मैं तो हमको शुरू से लेकर सबको है आज सुना नहीं दादी जानकी भी कहती मुरली के मुरली तो हमारी एक आईना ही समझो मुरली पढ़ने के जगह तो हमारा जीवन ही बेकार है क्यों आत्मा को भोजन मिलता है शरीर को भोजन हम तीन बार देते हैं आत्मा को भोजन देते हैं। बाबा ने मुरली का नियम क्यों रखा है तो भी हम इतने सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं मुरली का गायन कई समय से सुनते आए मुरली का पूजन होता है मुरली का गायन होता है लकड़ी की मुरली थोड़ी पूजी गई मंदिरों में ये भगवान वासी की जो मुरली है वो हमारे इस जीवन को आत्मा को शक्तिशाली बनाती है इसका इतना जोर देते हैं कि रोज मुरली सुनना बहुत जरूरी है। इस मुरली के बगैर आत्मा कमजोर हो जाएगी बैटरी चार्ज होती है कमजोर हो जाएगी तो आगे बाहर अच्छा खा जाएंगे। तो हम लोग मुरली के बगैर भी रह नहीं सकते थे तो कराची में भी कुछ नहीं जो तपस्या जो हम लोगों ने की ये बहुत भारी बेहतरी है हमारी जैसे आज भी सवेरे कौन सुना रहा था हम बहुत तपस्या में रहते क्यूँ हमारे पास कोई जिज्ञासु थोड़ी आते जिसको ज्ञान देवे जो 10 साल जो हम लोगों ने तपस्या की हम कहते थे बाबा ने जैसे मुरली चलाई और एक हाथ में छत पड़े कोई पानी के टाटी पड़े कोई कार अकेले अकेले बगीचे के पेड़ के नीचे कापी पेन ली और जो हमारे अंदर जो शुद्ध संकल्प चले उसे कापी पर लिख देते थे। लिखने से क्या होता था हमारी उन्नति कैसे होती थी सब जो कभी कोई संकल्प आया तो कहीं आत्मा तो वो ही हूँ ना उस आत्मा पे इतने अच्छे श्रेष्ठ संकल्प चले इसको ये संकल्प क्या चला ऐसे हम इनको करेक्शन कर उस कापी को पढ़ते थे इस आत्मा ने क्या शुद्ध संकल्प किया था। हम व्यर्थ संकल्पों को संशय समझते थे संशय कितनी बड़ी बात है व्यर्थ संकल्प माना संशय बुद्धि आज व्यर्थ संकल्प तो इतने चलते हम सब कोई बात ही नहीं कि व्यर्थ संकल्प की लंबी लाइन चल जाती है लेकिन हमारी लाइफ में जो हमने तपस्या की हम व्यर्थ संकल्प को लाने नहीं देते और लिखते थे तो बाबा भी लिखता था हम लोग लिखते बाबा काम भी हमको देता था ये ऐसे लिखे क्या हो जो मैंने मुरली चलाई अचानक बाबा पेपर लेते बच्चे मैं हम लिखते नहीं थे अचानक पेपर बाबा लेता था बच्चे आज मुरली चलाई लिख के ले आओ। दूसरी वंडरफुल बात क्या शॉर्ट हैंड नोट्स हम सभी ने अपने अपने बना लिए हम बिना भी सीखे नहीं शॉर्ट हैंड नोट्स क्या होते हैं। बाबा मुरली चला रहा है कोई लिखता है भाई ए आत्मा पी परमात्मा जन्म जन्मांतर जे जे जन्म जन्मांतर तो जितनी बाबा मुरली चलाता तो हम सारी बहने जितनी भी थी 300 सब शॉर्ट हैंड नोट्स अपने आप बाबा की मुरली से बनाते थे। मिसाल मम्मा हमारे पास आई सेंटर पर बाबा आया अब कौन मुरली लिखे जो बाबा की मुरली छपे मधुबन भेजे तो हम लोग खुद सेंटर पर बाबा आया, मम्मा आती थी बहुत करके सेंटर पर, तो मम्मा जो मुरली चलाती वो हम सब नोट्स लेकर के फिर उसी टाइम रख लेते थे चार्ज, फिर उसको अच्छी तरह डिटेल में लिखकर मधुबन लेते थे। वहां पर मधुबन में साइक्लोस्टाइल हो करके अलमुल्ला सबके पास चले जाते थे। इस प्रकार से शॉर्ट हैंड की बातें भी जैसे कि बाबाकरण करावन हार है, हम कहीं किसी स्कूल में इधर उधर कहीं में पढ़े, सब अपने मन से बनाया, उसमें भी अभी तक जो मूल्य आज हमारे पास चल रही है शॉर्ट हैंड की मूल्या फेयर हुई, और वो हम पाकिस्तान में जितने हम छपते थे वो हम सारे के सारे वहाँ से इधर ले आए हैं। और फिर रिवाइज कोर्स में बाबा ने जो चलाई वो भी अब पिछली रिवाइज कोर्स में चल रही है। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं बाबा की, जो बाबा बच्चों को कैसे कैसे सिखाया। करण करावन हार तो बाबा है, हम तो कोई बच्चियां खास पढ़ी नहीं थी, हम सिंधी जी बहने जितनी है बहुत में बहुत दसवीं तक, और कोई भी खास पढ़ी हुई नहीं है, कोई पांचवी कोई छठी, क्योंकि छठे सिंधी में अंग्रेजी सिखाते, चौथे सिंधी में अंग्रेजी सिखाते थे, चौथा सिंधी शुरू होता जब 1, 2, 3 पढ़ गया, चौथे में भी अंग्रेजी सिखाते थे, चौथे में पांचवे में दो नंबर 2, छठे में तीसरा, ऐसे करते करते पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से हमारी पढ़ाई भी, ये भी अलौकिक पढ़ाई और ये लौकिक पढ़ाई, बाबा ने दोनों साथ साथ जैसे पढ़ा करके आज देखो हमारे इस पढ़ाई का ये फल है। सारी बहने बड़ी बहने भी सब कुछ जानती है, सब कुछ लिख लेती है, हिंदी भी लिख लेती है, पढ़ भी लेती है। अच्छा, इस प्रकार से फिर तो वहाँ से कराची में आए, कराची में फिर इस प्रकार से हमारे कराची में भी बहुत सी हमारे परीक्षा आई, लेकिन हम सब अटल निश्चय पढ़ते। अरे बाबा कहा तो पकड़ा, कभी हमने ये नहीं सोचा तुम 300 बहन भाई बहने हम कोई बाबा से जुदा होंगे, कभी भी संकल्प नहीं था। जुदा कैसे हो सकते, हम साथ रहे, साथ खाया, साथ पिया, जुदा हो ही नहीं सकते। लेकिन ड्रामा में देखो कैसा वंडरफुल पार्ट हुआ, जैसे हम अबू में आए अलग अलग निमंत्रण हमारे मित्र संबंधों को पता चला, और उन्होंने निमंत्रण दिया, और अलग कोई दिल्ली कोई लखनऊ कोई कहाँ, अब एक दो से सब अलग हो गए। कोई बाबा से अलग होना चाहती थी, बाबा मुलिया चला के एक साल जब अबू में आए, बाबा ने एक साल पूरा अबू घुमाया, रोज क्लास के बाद बच्चे चलो घूमने, जैसे गौआ चलो चलने, इस प्रकार से बाबा के साथ क्लास के बाद सीधा रास्ता बस्ता नहीं करते थे, क्लास के बाद सीधा बाबा के साथ पूरा अबू, बड़े से बड़ी पहाड़ी तक बाबा ने पूरा साल हम यहाँ घूमे, बाहर नहीं निकले, तब तक निम्मत आते रहे, थोड़े कल बेकल कोई बहन निकली, गौमुख पर गए, गौमुख किसी ने देखा नहीं होगा, 800 सीधा वहाँ थी, बाबा हमको ले चला, ऐसी जगह कोई नहीं छोड़ी जब अबू के लिए, पर अबू का याद कर देख करके सुंदर खाते, बाबा ने ये अबू का स्थान कैसे चुना, जा इतने एक ये दिल वाला मंदिर, अचल घर, कुआरी कन्या, देखो यादगार हमारे बने हुए, अबू अबा का घर, ये भी ड्रामा में कोई नई सीन दिखाई देती है। मन चित्र नहीं था तो हम पाकिस्तान से या ऐसे स्थान पर आएंगे जहाँ पहले से हमारे यादगार बने हुए, ये पहले से यादगार बना पड़े ना, तभी हम सब देखते हैं चेतन दिलवाला पर बाबा मुरली चलाते हैं, बच्चे तुम चेतन दिलवाला हो और वो जल दिलवाला, तो ये जो है एक साल घूमे, और उसके बाद बाबा ने मुरली चलाई, और निमंत्रण जैसे आते गए बाबा के बच्चे अब तुमको बाहर जाकर के सेवा, पहले सरबंधु की सेवा करो, सरबंधु को ये डर था तो पता नहीं पाकिस्तान से आएंगे न आएंगे। मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री सुनाती हूँ, तो हम जब पाकिस्तान से, दूसरी दो तीन बातें बाबा ने पक्की की, एक तो बाबा कहते वार जो है तुम्हारे सभी खुले रहने चाहिए, क्यों, तुम शक्तियाँ जब तक तुम जीत नहीं प्राप्त करेंगी तब तक तुम्हारे वार सभी खुले रहेंगे। दूसरी बात, बाबा लिटरेचर छपाता था लाल स्याही से, क्यों, खून की नदियाँ भाई बच्चे बहने वाली है, ये हमारी निशानी है लाल स्याही की लिटरेचर छपाना। अब तो यहाँ बाहर आकर कई रंग के लिटरेचर छप गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने जितना लिटरेचर छपाया वो लाल स्याही से, क्योंकि बाबा जो थे, बाबा कहते थे अरे अब यहाँ से ही हमको नेपाल में बड़े बड़े चित्र वगैरह फिल्म चलाकर झाड़ तुरमूर्ति सारा लिटरेचर बाबा भीतर सहस्त्र मूर्ति बड़े बड़े फ्रेम चला करके पहले से ही, क्योंकि हमको राजाओं के पास जन्म लेना है, तो नेपाल के राजा इधर राजा उनके पास बाबा ने ये सारे फ्रेम चले चलाए, बड़े बड़े चित्र भेजे, लिटरेचर भेजा। हम थी लिटरे उसमें ऑफिस में, तो जितने प्रेस में छपते थे, गोल्डन भी छपते थे, डीलक्स कागज पर जितने पास छपते थे, बाइंडिंग हम लोग खुद अपने हाथों से करते थे। हमारी पर कराची में दिन चला ये रही, तो 40 तो मशीन थी, 40 बैलेंस मशीन चलाने पर बैठी रहती थी कपड़े मार सिलाई, क्योंकि बाबा कहते थे कर्म योगी हो, दिनचिरा कैसे होगी, सब अपने हाथों से। सुरमा अपने हाथ से, जूते हमने कभी नहीं बैठ के पहने, वंडरफुल बात मैं आपको बता दी, बाबा को जूते कौन से पहनाए, चप्पल, ये जो टैंक्स होती है ना, जो मिलिट्री में उसमें होती है मोटी मोटी टैंक्स, वो बाबा ने टैंक्स मंगाई, उसको काट काट के तेरे तेरे तरे चप्पलों के, वो हमने चप्पल पहनी है, बाहर आकर हमने बाहर के दुनिया के चप्पल पहने हैं, अंदर हमने कभी बाहर का चप्पल पहना ही नहीं। देखो 14 साल जब तपस्या की है, तो सब चीज अपने घर की, सुरमा सराई पाउडर पेस्ते जूते, हर बच्चे को डिपार्टमेंट जैसे यहाँ बनी पड़ी है ना, ये बाबा की सिस्टम अब तक चल रही है। जूते बनाने वाले 2-4 भाई थे, लड़के थे, कुमार थे, वो जूते बनाते थे, और बहने थी 40-50 बहने मशीन पर बैठी रहती थी, तो बाबा हम बच्चों को कपड़े जो पहनाते थे, कैसे कपड़े पहनाते, ये तो हमारी परीक्षा बाबा लेते हैं। ये जो कोड़ा बास्ता तुम लोग गिलासों पर चलाते हो ना, वो फ्रॉक पहनना में बाबा हमको पहनाए, वो भी पहनाए, पापड़ी भी पहनाई, और प्रकार के कपड़े पहने, पहनाए सफेद, लेकिन ये भी कहाँ कहाँ बड़े बड़े घर की सिंधी बहने, अच्छे से नौकर चाकर जहाँ थाली हाथ में देने वाले, बढ़िया बढ़िया विदेश के कपड़े पहनने वाले, परंतु हमको महसूस नहीं बाबा को क्या पहना रहा है। जो बाबा पहना है वो बड़ी खुशी के साथ, कोरा बास्ता पहना है, पापड़ी पहना है, सूती खदर पहना है, जो बाबा पहना है फ्राक पैजामा वैसे ही बाबा ने पहना है, तो वो भी हमारे इस प्रकार से भी बाबा ने। तो मशीनें भी चलाने वाली बहने चाहिए, किताब की बाइंडिंग करने वाली बहने चाहिए, भोजन बना वहाँ को भाई का खाना बना, भाई ने सब खाना बना देते। तो दिनचर्या में हमारा जो कर्म सेवा बिल्कुल टाइट थी, और दिन में फिर नीचे हमारा 3 मंजिल का मकान था, तो बाबा कहता था नीचे है नीचे का पोर्शन, बीच का है, बीच का ऊपर है मूल वतन, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन, ऊपर मूल वतन, और बाबा हमको खाट बनी सोने पट्टे में सोते थे। ये भी हमारी देखो तपस्या करनी है तो बच्चे तक पट्टे में लेटो, खाते बिल्कुल थोड़ी, बहुत करके ऊपर हाल में 30 गधे बिछे रहे, 30 बहने सोती थी, कभी 40 बहने सोती थी, खाट नहीं थी, लेकिन मम्मा जो थी हमारे साथ ऊपर रहती थी, मम्मा हमारी तपस्या देखती थी, ये देखती थी रात को कौन उठ करके तपस्या करती है, तो हम लोग रेस करते थे आपस में, तो देखते थे मम्मा हमारा नंबर चेक कर रही है, रात को उठ करके बैल आंगन बहुत खुला था, दो बैल एक दो के सामने दृष्टि देते थे, सारी रात बैठ के नींद ना आ रही योग में सामने दृष्टि देते रहते, तो मम्मा ऐसे देखती थी कौन बैठी है, कौन उठी है, कौन सोई पड़ी है, बीच में मम्मा के कमरे का दरवाजा था, तो बैल आंगन मम्मा लेके सबको देखती थी, तो सब रेस में लगे रहते थे, योग तपस्या के रेस में लगे रहते थे, ऐसा पुरुषार्थ करते रहते थे, जो आज हमारा वो पुरुषार्थ हमारी जो लगन है एकांत में बैठने की, एकांत में लिखने की, मनन चिंतन करने की, अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से फाउंडेशन ऐसा था। हम कहते थे हम एकांत में कोई बुलावे नहीं किसी काम के लिए, हम बैठे रहे लिखते रहे बैठे रहे, दिनचर्या तो हमारी कर्मणा सेवा की भी थी, ऐसे थोड़ी सब चीज अपने हाथ की हमने खाई है बनाई है पहनी है, तो जरूर काम हम करेंगे तभी तो खाएंगे पियेंगे ना, ऐसे थोड़ी अपने आप हो जाएगा, क्यों बाहर का तो कोई अंदर लाला नहीं है, सब अपने हाथ से करना, तो अब दिनचर्या भी ऐसी रही हमारी, कर्मणा सेवा भी सीख गए, और बाबा का यज्ञ भी संभाला गया, ऐसे करते करते हमारी दिनचर्या रात को फिर बाबा कभी कभी आते थे बोर्डिंग में हमारे पांव देखते, बतिया पांव दिखाओ, क्योंकि चरण कमल भी पूजे जाते हैं, तो हम लोग सोच चुके थे बाबा कमल पांव क्यों देखता है, बाबा ये तरह साफ है इनका, बतिया बिस्तरे में सोती हो तो पांव पे तुम्हारा साफ होना चाहिए, तो बोर्डिंग में भी बहुत अच्छा सिखाया, हम हर समय समझो सीखने में अपनी जिंदगी है, अभी तक हम कहेंगे हमारी ये जीवन सीखने की है, जब तक जीते रहे तब तक सीखते रहे। तो सीखना जो है हमारे बहुत जरूरी है, क्यों संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। तो जो आज बाबा ने जो बच्चों को सिखाई है, मम्मा ने जो बच्चों को शिक्षा दी है, उसे शिक्षा पर चल रही है। जो बाबा ड्यूटी शुरू से ड्यूटियाँ चली आ रही है, वो अभी तक देखो यज्ञ में सिस्टम कितनी अच्छी चल रही है। हम याद करते हैं, देखो बाबा ने सिखाया है, आज देखो हमारा ये बेहद का यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ बढ़ चुका है। क्यों स्थापना ने देखा 300-400, आज तो देखो कितने लाख भाई बहन हो गए, ब्रह्मा की भुजा कितनी बन गई। ये जब देखते हैं और मन में बहुत खुशी होती है, देखो बाबा का यज्ञ कितना ऊंचा हो गया, स्थापना का कार्य में कितने बाबा कहते थे बच्चे अंत में तो बहुत बच्चे निकलेंगे। अभी आप मुझियों में पढ़ते हो बाबा कितने बच्चों की महिमा करता है और कितने बच्चे निकलेंगे। तो ये जो सारा कार्य बाबा का चल रहा है एकदम 60 साल का कार्य, 60-65 साल तो अभी हो गए ना। तो हम शुरू से लेकर बाबा की स्थापना को देखते देखते अभी तक देख रहे हैं कितनी भुजा है बाबा की, ब्रह्मा की कहते ना हजारे भुजाए, जो मददगार बच्चे हैं वो सब भुजाएं तो है। तो देखो पाकिस्तान से यहाँ आए, जो पाकिस्तान स्टीमर में चले हमारी बड़ी परीक्षा आई, ये मैं आपको एक परीक्षा सुनाती हूँ। देखो बाबा कहते हैं बच्चे परीक्षा तो आएगी, थे हम 300 साढ़े 300, तो हमारा जो सामान जो था यूनियन की मजदूरों की बनी रहती है, उन्होंने कहा बाबा ने सारी मोटरें बसें सब क्यों पहाड़ पर चलेंगी नहीं, एक मोटर ले आए। और वहाँ बहुत हमारी मोटर बसें थी, मिनी बसें बड़ी बसें, क्यों बाबा के पास आते जाते थे, कहा शहर में भी जहाँ बाबा रहते वहाँ मूली सुंदर में जाते थे, समझा। तो क्या था, तो बाबा ने ये मोटर सारी एक ले आए। जब स्टीमर में हम आए तो मजदूरों ने कहा तो हमको ने 1,000 रुपए दो, 1,000 नंग थे, लेकिन हमने कहा तुम देंगे कुछ ऐसी बात थी। उन्होंने कहा हम आपका सामान नहीं उठाते, कोई बात नहीं। बाबा ने बच्चों को सिखा दिया था बच्चे तो मिलिट्री मार्शल हो, जिस समय सीटी बजे और तुमको हाजिर होना। तो जब इन्होंने बात की तो बाबा ने सीटी बजवाई, हम जैसी मुझे सारी बैठी हुई थी बहने में सबके बार खुले, सबकी शक्ति सफेद वस्त्र फ्रॉक और पैजामा, जो भाई लोग पैजामा खुला पहनते मोहम्मा को पहना हुआ था सबको, सीटी बजी और सब स्टीमर से उतर के नीचे आ गए। अरे उन्होंने देखा इनका तो लश्कर बड़ा भारी है, तो सारा सामान उठा के ले जाएंगे, जैसे मिलिट्री में होता है एक पेटी को एक कुंठे से उसने पकड़ा, कुंठे देखा ही तो उठाना शुरू कर ले, उनको लज्जाने लगी। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा हम आपका सामान सब उठाते हैं। तो हमारा स्टीमर जो था कैप्टन जो चलाने वाला, उसको बाबा मम्मा ने ज्ञान दिया, झाड़ मूर्ति समझे सभी बहन भाई, तो उन्होंने हमारे स्टीमर को 2-3 घंटा रोका, क्योंकि सामान चले तभी तो जान सब उतर आए नीचे। जितना डैमेज माल था जो दुकान छोड़ छोड़ के गए, हम पाकिस्तान में 3 साल रहे, पाकिस्तान हो चुका 3 साल में, और मुसलमान छोड़ के चले और हिंदू जो है सब छोड़ के अपने दुकान अपने मकान सब छोड़ के चले गए। तो जितने छोड़ के चले गए मुसलमानों को किसी भी दुकान के चीज का दाम का पता ही नहीं था, न पता होने का सस्ती 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 थी। तो बाबा ने एक एक रुपए का एक पैसे का लक्ष साबुन दिया, तो बड़ी बात हम तो साबुन ऐसे यूज करते थे डैमेज माल वैसा माल जो मिला। तो ऐसे मुसलमान जो थे वो हमको खुदा के बंदे समझते थे। तो जब हमारा इसी में बैठ के तो मुसलमानों बहुत रोया, एक लाइन समझो मुसलमान की खड़ी हो गई, न वो हमसे जुदा होंगे न उर्फत, ये हमारे गीत बज रहे थे आगे गिरा में फोन हाथ का था ऐसे चलाने का रिकॉर्ड वैसे थे। तो स्टीमर में बैठ के पहले हमने गीत बजाना शुरू कर दिया, तो किनारे से स्टीमर तो किनारे से दूर होगा ना, जब सामान पूरा चल गया तो मुसलमान खड़े को अरे हमको हमेशा वो खुदा के बने, हमारे देश के अंदर ये शक्तियाँ जो है ये खुदा के बंदे हमको सेफ्टी कर, भले शहर में खून बहता था कराची में हम रहते थे, और उन्होंने हमको पुलिस भी अपने गेट पर रखने दे दी, चलो बहने हैं आती जाती है जानते थे ये बहने हैं, पुलिस बहुत खड़ी रहती थी ऐसी खड़ी रहती चलो सेफ्टी के लिए। तो वो उन्होंने रोया बहुत रोया, जैसे हमारे देश में ये जब खुदा के बंदे हुए जैसे हमको छोड़ के जा रहे हैं। फिर हम स्टीमर में गए, तो स्टीमर में 2 रात हुए, देखो बाबा कहते ना अंत में खाना नहीं मिलेगा, हमने खाना था ना 4 दिन हमने खाना नहीं खाया, बाबा अपने साथ टोलियां वगैरह सब ले गए। ले चले तो टिकट जो थी बहुत सी डेक पर बैठने की थी, डेक नीचे उसमें पानी आते ऐसी भर रही, और कैबिन जिसकी टिकट थी वो लोग आए नहीं, कैबिन खाली पड़ी थी, कितनी कैबिन खाली पड़ी थी। तो कैप्टन से बात हो गई, कैप्टन ने देखा तो ये जो चलाने वाला है उसने कहा कैप्टन वाले जो आने वाले पैसेंजर वो आए नहीं है, चलो आप सब डेक से उठकर आगे अपने कैबिन से बैठ जाओ। तो सब बहन भाई जिसने बहनी जाती थी वो सब कैबिन में समा गई, और जो हमारे सामान था वो सब ऊपर आ गए, सिंधियल वाले गए, कई चीजें खाने की तो मिठाई तो बहुत ले गए, उसमें चार्ज भी रहना था। दो रात हम इसी बन गए, बाबा की दिनचर्या वो ही रही, सुबह उठकर क्लास कराना ऊपर छत पर स्टीमर में ऊपर जाके, और उसने सारा अपना स्टीमर जो था वो अंदर मशीनें वगैरह सब दिखा दी, उसको झारपुर मूर्ति दिया, झारमूर्ति उस समय झारपुर मूर्ति बोला तीन चित्र दे, ज्यादा थे ही नहीं चित्र, प्रदर्शन लगाइए तो कोई चीज थी नहीं, तो बहुत आते रहे। तो हम अपने रोज के रोज कपड़े सात पैजामे पहनते थे, सब ड्रेस सारी हम पहनी नहीं किसी ने भी, तो जितनी ड्रेस हमने उतारी वो दो बोरियां गेहूं की होती है ना, दो तीन बोरियां उसमें डाल दी, स्नान पान किया। जब आया कच्छ भुज का टाइम आधा रस्ता स्टीमर का, तो हमको उतरना ही था, और पहले से हमारी जो है कैबिन से ट्रेन की मुकर थी, बुक हुई पड़ी थी, लेकिन हमको स्टीमर से इसमें नया में चल के उस पार जाना था, सर यहाँ हम बैठे हैं वहाँ हालनपुरा इतना दूर सागर से उधर पहुंचे, तो उसमें कितने घंटे लग गए, क्योंकि सामान और बहने चले उतरे वहाँ पहुँच गए अपने किनारे तक, सामान भी चल गया इसर गया बहन भी पहुँच गई, पाँच सात घंटा लग गए, ज्यादा ही लगाऊंगा। उसमें क्या था, सूखे मेवे की बोरियां बहुत चली हुई थी डेक में, क्योंकि सूखा मेवा आप जानते हो किसमें से बादामिया काजू इतने सस्ते जो बहुत सस्ते, तो किसी ने ये फ्रूट की सूखे मेवे की बोरियां जो थी नीचे डेक में रखी थी, और हमारा सामान भी कपड़े वगैरह भी ऐसी बोरी में थे, तो हमारे कपड़े गुम हो गए, दो तीन बोरियां कपड़ों की, उसके बाद किसमिस की बोरियां गई नंगे वही थे, बाद जाकर अब मैं खोला तो ये तो कपड़े निकले नहीं, ड्रेस हम सब्जी गुम हो गई, दो फ्रॉक पे जमा, और किसमिस की बोरियां निकल आई, ये वो सुखा मेवा था। तो वहां से फिर इसी बल से फिर वहां ट्रेन में बैठे, बाबा तो हम बच्चों को बहलाता हुआ खिलाता हुआ, थोड़ी खाना पीने की तो बात थी नहीं, बाबा कहते ना अंत में ऐसा टाइम आएगा जो तुमको खाना न मिले तो तुम रह सको, ये हमने परीक्षा दे दी है, खाना न मिले तो कोई परवाह नहीं है, क्यों पानी पीने के लिए चाहिए। बाबा वैसे भी कहते हैं कि हर एक बच्चे को चक्की और हैंडपंप रखना चाहिए, बस घर में हैंडपंप पानी का होना चाहिए और चक्की, गेहूं का आटा पीसा नमक का पानी रोटी खा लिया नमक रोटी, बस अंत में देखना जितने भी साइंस के साधन है जितने तुम्हारे ये सब बिजलियों के साधन है पीसने वाले आटे कुछ नहीं मिल रहा है, ये बाबा ने पहले बताया। एक बार मैं अबू में आई तो बाबा कुआं खोदा रहा था मधुबन में, जहाँ मधुबन है, तो कुआं खोद के जब पूरा हुआ तो सारे पत्थर इतने इतने बड़े बड़े कि पहाड़ था तो निकले नहीं, तो मैं अचानक खड़ी मेरे साथ और भी कोई खड़ा था, तो सारे के सारे खोदे हुए में सब पत्थर गिर गए। बाबा ने कहा बच्ची अब अंत में देखना ये कुएं हैंडपंप लगाओ और अपने पास चक्की रखो, दो चीज ये दो चीजें तुमको नमक रोटी खाओ हरी गुनो गाओ, ज्यादा आपको चीजें मिलनी ही नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा आपको अंत में, ऐसा टाइम आने वाला है। हम लोग अब सेंटर पर रखते हैं हैंडपंप रखते हैं चक्की भी रखते हैं, चलो हमारे भाई बहन भी आकर सुख पाएंगे, क्यों टाइम ऐसा आने वाला है खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये भी परीक्षा हम लोगों ने दी खाने पीने की भी, चलो चार दिन न खाया तो क्या हुआ। जब हम अब पहाड़ पर आए तो पहाड़ पर हमारी टांगें सिरकने लगी, क्यों बाबा चला गया उतार कभी सीधे सीधे रास्ते पर चले कभी पहाड़ पर चले नहीं, तो बाबा ने हमारी ड्रेस बदली, तंग पैजामा सिलाई करा के दिया, क्यों वो जो पैजामा खुले थे उसमें मल पाऊ या अड़ जाते थे गिर जाती थी, पहले कोई गिर जाती कोई चोट खा जाती, तो बाबा ने कहा चलो बच्चिया अब तंग पैजामा में लग जाए तो दौड़ भी सको चल भी सको, जो रास्ते वही थे लेकिन तंग पैजामा, तो उसमें बाबा ने फिर वो ड्रेस हमारी बदला ली, क्यों एकदम से पहाड़ पर हवा पानी वगैरह सब बदल गया, और तो क्यों पानी भी आका भारी और सब चीज भारी लगने लगी, लेकिन अब बर्फ जमने लगी, हमारे हमने कभी बर्फ जमी देखी नहीं, पहले साल में आके देखा तो बर्फ की प्लेट प्लेट थालियों में जम जाती थी। अब उसके बाद तो अभी तो पंखे पंखे बदल गए, सारी नेचुरल कैलेमिटीज बदल गई है। तो नेचुरली है हम एक शहर छोड़ करके, वो वहां तो सर्दी थी नहीं पाकिस्तान में, ना हमने एक गर्म कपड़ा पहनते, शाल बाल कुछ नहीं पहनते थे। यहाँ आए तो धीरे 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 सब चीज बदलती गई। तो यहाँ पर भावन हमारे देश बदल रही, क्यों रोज हमको घूमने ले जाना, कभी पहाड़ पर चलना, कभी कहाँ चलना। एक बार हमको बाबा जंगल में ले चले, यहाँ अबू में, तो जंगल कोई ऐसा था जो हम निकल ही नहीं सके, बड़ी मुश्किल हो गई। सिटी बने जो रास्ता जावे वापस 12 बज गए। यहाँ अबू में हम जो घर में रहते वो घर पता नहीं क्यों नहीं सब लिया, इतने गए घूमने, बाबा भी नहीं आया है, बच्चे अभी नहीं, कहाँ चले गए, 12 बज गए सुबह के गए हुए, अब तक आए नहीं। बाबा ने तेरे संदेश पुत्री को भेजा, भाई जाओ बाबा से पूछो, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, बैंड के जाते जाते रास्ता बंद, गए कैसे पता ही नहीं, चलते गए बाबा के साथ, पैरों में अंदर केली थी, केली खाई, ये खाई, बाबा के साथ बैठे, मुरली चलाई, बाबा ने हंसा, पता ही नहीं चला कैसे जंगल से निकले। वो संदेश पुत्री जो थी वो ध्यान में गई, बाबा ने कहा भाई बाबा ने चलो बैठो बाबा से पूछो, भाई निकल नहीं सकते है तो क्या करे। वो ध्यान में चली गई तो बाबा ने कहा बच्चिया नहीं रास्ता तो मिल जाए। एक भील आ गया अचानक ही, किस कहां से आए पता नहीं चला। उस भील को हमने कहा भाई रास्ता दिखाओ, बहन के लिए हमको रास्ता ही नहीं आता है। जैसे भूल बुलाए तो बाबा मिसाल देते हैं ना, लखनऊ में भूल बुलाए का देखा होगा, मैंने तो देखा है लखनऊ में मुसलमानों का भूल बुलाए को बना हुआ है, अंदर जाओ नहीं फिर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आता है, जब तक किसी को बुलाओ नहीं तब तक निकलता निकल नहीं सकती है। ऐसे हूँ बहू ऐसे जंगल में जब हम गए तो वहाँ निकल न सके तो भील आया उसने रास्ता दिखाया, फिर हम चले आए। तो घर में आए तो सभी पूछे भी आज कहाँ चले गए, 12 बज गए अभी तक तू कोई नहीं, बाबा भी नहीं आए, तुम बच्चे भी नहीं, हमने हम सारे पूछ गए थे गुम हो गए थे पता नहीं चला, हम रास्ते का पता तब इतना टाइम लगे। तो बाबा ने हम बच्चों को यहाँ अबू पहाड़ पर भी घुमाया फिराया, फिर सेंटर पर भेजने के लिए बाबा रोज मुली चले बच्चे जाओ सेवा पर, तभी इस अबू का नाम बना है विश्व कल्याणकारी विश्व सेवा का। पाकिस्तान में हमने कोई सेवा नहीं की, अपने कोई बनाने के लिए तपस्या में लगे रहे, ये नहीं पता चला 14 साल में कैसे अंदर रहे, हमने मनुष्य वही नहीं देखा, अंदर ही पड़े रहे। और इतना अच्छा लगता था, महसूस भी नहीं होता था तुम 14 साल हमारे कैसे पीते, क्योंकि शाम के टाइम क्या होता था संदेश पूजा घर में जाती थी, कोई न कोई दृश्य देख के आती थी, तो बाबा कहता था बच्चियों को दृश्य दिखाओ, तो वो एक्ट करके दिखा, जो एक्ट न करके दिखाता तो बाबा संदेश पुत्री को सजा देता था ऊपर से, जो अगर कोई देखे क्या दृश्य तो बाबा कहता प्रैक्टिकल नहीं कपड़े भी पहनो, जैसे धर्मराजपुरी बाबा ने दिखाई किसी बच्ची को, तो पत्थरों की सजा बनाओ और उस पर लेटो पता चले सजा क्या होती है। ऐसे ऐसे दृश्य ऐसे बाबा ने दिखाया जो शाम के टाइम को ऐसा लगता था जैसे थिएटर हॉल में बैठे है, कोई बच्चियां कपड़े पहन के तैयार हो रही है, कोई रास कर रही है, कोई कुछ कर रही है, शाम के टाइम कोई न कोई दृश्य संदेश पत्र ले आती थी। तभी हमको पता नहीं चला 14 साल पाकिस्तान में हम कैसे रहे, कैसी हमारी दिनचर्या रहती थी, महसूस नहीं हुआ जैसे 4 दिन 5 दिन रहे ऐसा महसूस होने लगा। ये तो यह आता कि जैसे हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है, जैसे वहाँ खेल पाल और तपस्या, अब यह देखेंगे तो हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, बात क्या स्टूडेंट लाइफ पढ़ना पढ़ाना खुद भी पढ़ना दूसरों को भी पढ़ाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो पढ़ते हैं खेल कूद में और उसमें रहते हैं माँ बाप के छत्रचार में रहते हैं, लेकिन यहाँ देखो कितनी पढ़ाई का बात आ गई, यूनिवर्सिटी नाम पर गया पढ़ाई का रूप बन गया, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ओम मंडली के नाम से चला आ रहा था, अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, तो देखो पढ़ाई का रूप बदल गया नहीं। तो दिन बिदिन आप देखेंगे हमारे इसका भी पढ़ाई का रूप भी ऐसे चलता रहेगा, क्यों बाबा ने हमको लक्ष्य दे दिया बच्चे तुमको ऐसा बनना है, बोले तो बाबा के हम रोज सुनते हैं, मतलब चिंतन करना तो हमारा अपना काम है, भोजन मिलता है चबान हमारा काम है, चबान के अंदर हजम करना ये तो हमारा अपना काम है। बाबा तो बच्चों को बाप टीचर सतगुरु में तीनों संबंध में कैसे हमको पढ़ा रहे, बाबा कहते चलो कुछ न याद पड़े चलो ये तीन संबंध में कभी बाप को याद करो कभी टीचर को करो कभी सतगुरु करो, पढ़ाई पढ़ेंगे तो टीचर जरूर याद आएंगे, जैसे बच्चा स्कूल में बैठता है जब पढ़ता है किताब बैठ करके तो क्या याद आता है, टीचर याद आते हैं, बच्चे को टीचर ने पढ़ाया है उस पढ़ाई को याद करता है। तो बाल कर अगर तुम्हें पढ़ाई पढ़ेंगे तो तुमको टीचर भी याद आएगा, पद भी याद आएगा, अपना लक्ष्य भी याद आएगा, न पढ़ेंगे तो क्या होगा। सभी इतना जोर देते हैं पर रोज पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, रोज क्लास में आना बहुत जरूरी है, रोज बाबा की मुरली पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारी शिक्षा है हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ कमाई करेंगे तो उस अनुसार हम सबको पद भी मिलेगा। तो हम तो आए किस लिए, पढ़ने और पढ़ाने। और ब्राह्मणों का धर्म कर्म है पढ़ना और पढ़ाना। आगे सोचे थे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे निकले, पता चले मुख से कैसे निकले, आध्यात्मिक बच्चे बने ना, गोद के बच्चे हमारे मुख से होते हैं, गोद के बच्चे बने हैं। तो हम अभी गोद के बच्चे बनकर पालना ले रहे हैं। हम तो अपने जीवन को भाग्यशाली समझते हैं, बचपन से लेकर प्रभु की पालना ली है। और तो पालना के आधार पर देखो आज कितने आगे बढ़ते बढ़ते आगे अपना लक्ष्य पकड़ करके उस नई दुनिया में चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।